السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ انشاءاللہ ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے مراتب القراءت پڑھے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک کو ڈفرینٹ سپیڈز کے ساتھ پڑھنے کی تو اجازت ہے, مگر کہیں پر بھی ایسا نہیں کہ آپ تجوید کے رولز کو فالو کیے بغیر پڑھیں. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تجوید کے رولز کو فالو کریں, یعنی یہ ہمارے لیے ایک طرح سے کمپلشن ہے. اور جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ تجوید کے رولز کو فالو کرنا فرض عین ہے, کہ آپ اس کو ریڈنگ میں فالو کریں یہ فرض عین ہے. آپ سیکھ رہے ہیں ان کے ناموں کو یا ان جو بھی ٹرمینالوجیز ہیں تجوید کو ایز اے سبجیکٹ سیکھنا, یہ آپ کا فرض کفایہ ہے. یہ آپ کے اوپر ضروری نہیں کو رولز اس کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک کو, یہ آپ کے اوپر فرض عین ہے. آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن پاک کی ریسائٹیشنز کے دوران کی جانے والی ڈفرنٹ ٹائپس کی مسٹیکس. قرآن پاک کی ریسائٹیشن میں دو طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں لحن جلی, جو بہت واضح طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں جن سے اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. دوسری مسٹیکس ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں لحن خفی, یہ ہڈن مسٹیکس ہوتی ہیں, چھپی ہوئی مسٹیکس ہوتی ہیں. ان سے بھی بچنا ایک ہائیسٹ لیول آف ریسائٹیشن کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لحن جلی کیا ہوتی ہیں. لحن جلی بہت واضح مسٹیکس ہوتی ہیں. لحن جلی جو ہیں یہ بہت کلیئر اور واضح مسٹیکس ہوتی ہیں, اور یہ آپ کی جو قرآن پاک کی ریڈنگ ہے اس کے دوران معنی کے اندر بھی چینجز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ عربک لینگویج ایک بہت فصیح زبان ہے, اور اس میں ذرا سا لیٹر چینج کر دینا یا حرکت کو چینج کر دینا معنی کے اندر ایک بہت بڑا چینج لے آتا ہے. اس وجہ سے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ریسائٹیشن کو کریں. اس کے اندر کون کون سی مسٹیکس شامل ہیں؟ سب سے پہلے تو لیٹر کو صحیح طرح سے نہ بولنا. جیسے با لکھا ہے, فار ایگزامپل حرف با ہے اور کوئی اس کو نون پڑھے, کہ ڈاٹ نیچے ہے اور آپ پرسپشن میں اسے نون پڑھے, تا ہے سا پڑھے, یعنی لیٹر کو آپ غلط پڑھے ہیں. دوسرا, حرکہ کو غلط پڑھنا. فار ایگزامپل فتحہ لکھی ہوئی ہے اور اسے کسرہ پڑھ دیا جائے, ٹھیک ہے, چینجنگ آف حرکہ, بالکل چینجنگ آف لیٹر, چینجنگ آف حرکہ, کہ آپ حرکت کو چینج کر دیں. بما لکھا ہے فتحہ پڑھ دیں, سکون لکھا ہے ساکن لیٹر کو متحرک کر دیں, انعمت کو انعمت, یعنی اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیں. یا تشدید ہے اور اس میں آپ ایک لیٹر اسکپ کر دیں, جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے الرحمن الرحیم, تو آپ اسے پڑھیں الرحمن, یعنی الرحمن تشدید کو مکمل کرنے کے بجائے الرحمن. یا جیسے ورڈ ہوتا ہے بینہ, تو بینہ بینہ, یعنی بینہ پڑھنے کے بجائے بینہ, تشدید کو چینج کر دیا. ساکن لیٹر کو متحرک کر دینا, تشدید کو مشدد لیٹر کو ایک دفعہ پڑھنا. اسی طرح مخرج کی چینجنگ کرنا. تو مخرج کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے کہ مخارج کو سیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ مخرج کو چینج کر دیتے ہیں تو یہ بھی لحن جلی میں ہے اور بہت دفعہ یہ معنی کو چینج کر دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے قلب, اور قلب کو قلب پڑھا جائے تو آپ دیکھیے قلب کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ اور قلب کا مطلب ہوتا ہے ڈاگ, تو یہ بہت بڑا چینج آ جاتا ہے. اسی طرح سے قل اور کل, یہ بھی اس طرح سے, یعنی قل لیٹر کو قاف کو ٹو ڈاٹس والے قاف کو کل کاف کی طرح پڑھنا. تو مخرج کی چینجنگ کرنا, یہ بھی لحن جلی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, پرومیننٹ بہت کلیئر مسٹیکس ہوتی ہیں, بہت واضح مسٹیکس ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے لینتھس کے اندر, اور لینتھس میں زیادہ امپورٹنٹ جو ہے یا پھر جو جلی کے اندر آپ کو جو مسٹیکس جلی کے اندر آ جاتی ہیں وہ ہے ایک حرکہ کو دو حرکہ یا دو حرکہ کو ایک حرکہ پڑھنا. جیسے ہم ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں مت طبیعی کی مسٹیک, یعنی مت طبیعی کی جو مسٹیکس ہیں وہ کرنا. مت طبیعی کی مسٹیکس اس کے اندر شامل ہوتی ہیں, باقی نہیں, لیکن مت طبیعی کی جو مسٹیکس ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. کہ آپ جیسے فار ایگزامپل वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, तो इसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल पढ़ना, यानी वो वन हरका है और उसे आपने टू हरका स्ट्रेच कर दिया, या टू हरका को वन हरका कर दिया, जैसे ला आलम तो आप उसे पढ़े ला आलम, और आपको पता है जैसे आप मीनिंग जानते हैं कि कितना बड़ा चेंज आ जाता है इससे, ला आलम का मतलब होता है मैं नहीं जानता, और ला आलम का मतलब होता है डेफिनेटली श्योरली नो डाउट दैट आई नो, मुझे पता है यानी मैं जानता हूं नो डाउट, तो इसके अंदर जो है वो लाम ताकीदन आ जाता है, फिर जो वन हरका वाला लाम होता है वो ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, जो टू हरका वाला नाम होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह जो मतबियाई के अंदर चेंजिंग है ये भी जली के अंदर आता है। अब बहुत सारे लोग जैसे आते हैं और सवाल करते हैं कि क्या हम तजवीद पढ़ाएं, क्या हमारी तजवीद इस काबिल है कि हम इसको पढ़ाएं, तो उसमें आप देखें कि ये जो लहन है ये आपको एक बहुत वाज़े आइडिया देता है कि क्या आप तजवीद पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं। तो उसमें आप देखें कि जैसे अगर चूंकि इसके अंदर जो स्कॉलर्स लहन जली को ऐड करते हैं वो ये कहते हैं कि ये वो मिस्टेक्स होती हैं जो एक आम कारी, एक आम टीचर बहुत आराम से जज कर लेता है, यानी इसके लिए जरूरी है कि जो उस्ताद इन मिस्टेक्स को नहीं चेक कर सकता या उसके अंदर खुद अपनी रीडिंग के अंदर इस किस्म की कोई मिस्टेक मौजूद है, या वो जब सुन रहा है तो वो मखारिज के डिफरेंस को या वो लेंथ के डिफरेंस को या वो तशदीद की डिफरेंस को नहीं फील कर पा रहा, तो उसको चाहिए कि वो अपने इन एरियाज को पहले स्ट्रांग करें। ठीक है, इसी तरह से अब हम जब आते हैं लहन खफी के ऊपर तो ये छुपी हुई मिस्टेक्स होती हैं, हिडन मिस्टेक्स होती हैं, और आपकी टीचिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप लहन खफी को पिक करने लगे, यानी लहन खफी के लिए आपकी टीचिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। लहन खफी क्या होती है, इसके अंदर बेसिकली दो लेवल्स हैं, इसको हम कहते हैं लेवल वन और लेवल टू। लहन खफी में दो लेवल्स हैं, लेवल वन और लेवल टू। लेवल वन के अंदर जो मिस्टेक्स आती हैं वो कम छुपी हुई होती हैं, और लेवल टू के अंदर जो मिस्टेक्स आती हैं वो बहुत ज्यादा हिडन होती हैं, और इसी तरह से टीचर की एक्सपर्टीज भी दोनों तरह की मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट होती हैं। आपकी कम एक्सपर्टीज जो है वो लेवल वन को फाइंड आउट कर लेती हैं, और आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप लेवल टू की मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें। जो लेवल वन की मिस्टेक्स हैं उनके अंदर कौन सी मिस्टेक्स शामिल हैं, सबसे पहले तो आप देखें, अब इसमें फरूई मदूद आती है कि फरूई मदूद की लेंथ को चेंज करना, यानी आप या अयुहा इसका आप पढ़े या अयुहा, ठीक है, या अयुहा इसको कम खींच के पढ़े हैं, जैसे असमा तो इसे आप पढ़े असमा, ठीक है, आपने उसकी लेंथ कम कर दी, तो फोर हरका को या फाइव हरका को या वो मदूद जो सिक्स तक जाती हैं उन्हें कम खींच के पढ़ना, इदगाम स्किप कर देना, जैसे आपने देखा होगा चूंकि मदीना मुसहफ के अंदर इदगाम के सिंबल्स नहीं होते, खास तौर पे जो नाकस इदगाम होता है, तो स्टूडेंट्स उसको स्किप कर देते हैं, तो ये भी मत जो लहन खफी लेवल वन में आता है, पहली फरूई मदूद को ना पूरी तरह से पूरा करना, नंबर टू इदगाम स्किप कर देना, जैसे मन या आलम को मन या आलम पढ़ा जाए, या इख्फा स्किप कर देना, अंता को अंता पढ़ा जाए, ठीक है, या इकलाब ना करना, यानी प्रोमिनेंट चीजें आ रही हैं, गुन्ना ज्यादा देनी करे, मिम्मा मिम्मा, यानी मिम्मा गुन्ना को ज्यादा देना करना बल्कि मिम्मा, बस आप क्विकली उससे गो थ्रू हो गए, तो ये सारी मिस्टेक्स जो है वो लेवल वन में आती है, ये जो ये वाली मिस्टेक्स हैं, इस टाइप की मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना कंपैरेटिवली लेवल टू के मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने से ज्यादा आसान होता है, आपको एकदम हिट कर जाते हैं, नहीं नहीं आपने दगाम छोड़ दिया, आपने इख्फा छोड़ दिया, आपने मत पूरी नहीं की, आपने गुन्ना का रैंक पूरा नहीं किया, ये सारी मिस्टेक्स जो है वो इसके अंदर शामिल होती है। अब हम देखते हैं लेवल टू की, लेवल टू की जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हिडन होती हैं और आपको बहुत एक्सपर्ट यानी होना पड़ता है इन इन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए। इसके अंदर है मेजोरिटी सफात के मिस्टेक्स, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम्स होगी, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अल कुरार यूं करके रॉ को ना एयर के साथ अल कुरार, तो वो करके नहीं बल्कि अल कुरार, यानी आपने सफात को पूरा नहीं किया, या बहुत दफा ऐसा होता है कि रॉ के अंदर ना वो एग्जैजरेटेड ट्रिलिंग आने लग जाती है, इजाफी तकरार आने लग जाती है, यानी अर अर करके वो बहुत ज्यादा रोल कर रहे होते हैं, अर इस तरह की साउंड आने लग जाती है, जिससे अवॉइड करना जरूरी है। अब ये जो इजाफी ट्रिलिंग है ये भी लेवल 2 के अंदर आती है, क्योंकि एकदम आप उससे गुजरते हैं तो वो पता नहीं चलता कि ज्यादा हो गई है या जितनी डिजायर्ड थी उतनी ही हुई है। तो जो सफात की मिस्टेक्स हैं वो लहन जली लेवल 2 में आती है। इसी तरह से हमारे पास होते हैं, आपने वर्ड सुना होगा तफखीम, इसको बहुत आसान लफ्जों में हम कहते हैं हैवीनेस। हैवीनेस के लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, यानी फतहा के साथ लेटर आ रहा है तो बहुत ज्यादा हैवी होगा, बम्मा के साथ आ रहा है तो उसका हैवीनेस लेवल जरा कम होगा, कसरा के साथ आ रहा है तो उसका हैवीनेस लेवल बहुत कम होगा। जैसे आप पढ़ते हैं कोला, लेकिन कईला, अब इसको आप कोईला करके नहीं पढ़ते, यानी कोईला बहुत ज्यादा हैवी नहीं करते, कईला बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर तफ्रीम चली जाती है, लेकिन कोला दैट्स टू मच हैवी, आपने उसको ज्यादा हैवी करना, बिकॉज वो जो है वो फतहा के साथ है। तो वेरिएशन आती है तफ्रीम के अंदर, हैवीनेस के अंदर हरकत के एतबार से। इस वेरिएशन को ना रखना, ये आप फतहा को, दम्मा को, साकिन को, कसरा को, सबको एक जैसा हैवी करें, ये वेरिएशन ना रखना, ये भी खफी मिस्टेक्स में आता है। इसी तरह से इत्माम हरकत, ये वर्ड जो है ये आप इसको याद कर लें, और ये इंशाल्लाह जब हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप मेरे से बहुत ज्यादा ये वर्ड सुनेंगे, इत्माम अलिफ ता मीम अलिफ मीम, इत्माम हरकत, यानी कंप्लीशन ऑफ हरका। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो हरकत है वो मुकम्मल हो, आपकी हरकत कंप्लीट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक तो होता है बहुत मजहूल स्टाइल में पढ़ना, बहुत मजहूल होता है वो स्टाइल, जैसे बम्मा को ओ करके पढ़ा जाए या कसरा को ए करके पढ़ा जाए, बहुत मजहूल स्टाइल में होता है। लेकिन जैसे मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा, बहुत अच्छे इवन रिसाइटेशन उनकी बहुत हाई लेवल की होती थी, मगर वो भी इस तरह की साउंड को एड करते हैं सम हाउ कहीं कहीं पर। तो हर जगह आपकी इत्माम हरका होनी चाहिए, जैसे आलई हुम, तो आप यहां पे स्टूडेंट हुम को हुम पढ़ने की बजाय आलई हुम आलई हुम हुम पढ़ देते हैं, तो वो हो जाता है, हो नहीं हु, आलई हुम आलई हिम आलई कुम, तो वो आलई कुम नहीं होना चाहिए, वो जरा भी उसका लेवल वीक नहीं होना चाहिए, आलई कु आलई कुम अलैही अलैहिम, इसी तरह से नेजल साउंड यहाँ ऐड ना हो, डोंट से लाइक अलैकुम कु क्या आप उसको नाक में लेके जा रहे हैं, अलैहिम ही क्या आप उसे नाक में लेकर जा रहे हैं। तो ये जो मिस्टेक्स हैं ये इतनी हिडन होती हैं कि ये आराम से पिक नहीं की जा सकती, एकदम आपको क्लिक नहीं करती, बल्कि आपको बहुत ध्यान से, यानी वही बात है कि टीचर को अपनी लिसनिंग एबिलिटीज बहुत हाई करनी पड़ती हैं इस तरह के मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए। और इवन स्टूडेंट को भी, कि जब आप प्रैक्टिस करें हैं, जब तक आप इन मिस्टेक्स को फील नहीं करते, जब तक आप इनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आ सकते, इसलिए आपको भी अपनी लिसनिंग एबिलिटीज बहुत हाई करनी पड़ेंगी, कि जो मैं पढ़ रही हूं और जो टीचर पढ़ी है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू साउंड्स। और मैंने आपको फर्स्ट से बताया था कि तजवीद के अंदर सबसे ज्यादा चीज जो फायदा देती है वो आपको बेस्ट लिसनिंग है, बेस्ट लिसनिंग, कि आप कितने ध्यान से साउंड्स को सुन रहे हैं। और वर्ड को मत सुने, हर एक एक हर्फ को सुने, एक एक लेटर को सुने, उससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, बहुत जरूरी है यानी तजवीद के इम्प्रूवमेंट के लिए कि आप हर्फ बाय हर्फ सुने, नॉट वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, हर्फ से जो है आप जब उसको ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, ये तो हमारा प्री चैप्टर था जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें देखी, अब हम इंशाल्लाह अपना डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं मखरज, ठीक है, चूंकि हमने कहा कि मखरज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे ये मिस्टेक्स हैं इन्हीं के एतबार से हम एक क्विक रिव्यू सा करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग मखारिज को ऑलरेडी जानते हैं, मखारिज को कि कहाँ कहाँ से कौन सा लेटर अदा होता है, उसमें मैं थोड़ी सारी टिप्स आपको एड करके दूंगी इंशाल्लाह कि आप उसको प्रैक्टिस किस तरीके के साथ करें, अपने मखारिज को स्ट्रांग करने के लिए आप कैसे प्रैक्टिस करें। मखरज का मानी क्या है, मखरज हम किसे कहते हैं, मखरज का मतलब होता है खराज से वर्ड है, इसका मतलब होता है निकलना, ठीक है, और मखरज निकलने की जगह को कहते हैं। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट, वो जगह मुंह में या हलक में, जहां पर जिस जगह से आपकी कोई साउंड आती है, किसी भी स्पेसिफिक लेटर की स्पेसिफिक आवाज जिस स्पेसिफिक जगह से आती है मुंह में या हलक में, उसको आप क्या कहते हैं? मखरज। मखरज बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं मखरज मुहक्कक, मीम हा जीम हा वाला, कौफ कौफ। इंशाल्लाह नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने एडमिन को फॉरवर्ड कर दिए थे। मुहक्कक मीम हा कौफ कौफ। और दूसरा होता है मखरज मुकद्दर, मीम कौफ दाल रॉ। हम बहुत कम कम टर्मिनोलॉजीज पर वीक पढ़े, और मैं आप सबसे चाहूंगी जो स्टूडेंट हैं, जो कमिटेड हैं तजवीद के लिए, वो इन सब टर्मिनोलॉजीज को याद करें, ठीक है? ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा, और हमें वाकई ही तजवीद की फील्ड में बहुत सिंसियर किस्म के लोगों की जरूरत है। इस वजह से मैं चाहूंगी कि आप सब कोशिश करें, अपनी एक एफर्ट डालें कि आप इन टर्मिनोलॉजीज को याद करें। तो मुहक्कक मखरज मुहक्कक, और दूसरा मखरज कौन सा है? मखरज मुकद्दर। मुहक्कक मखरज वो मखरज होता है जो डेफिनेट है, यानी आप उसके आर्टिकुलेशन पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके हिट को फील कर सकते हैं। जैसे बा, मैं बा बोल रही हूं तो कहां से आ रहा है? लिप से आ रहा है। जैसे ना, तो मुझे पता है कि टिप कहीं पे लग रही है, ठीक है? यानी डेफिनेट मखरज है एक, डिटरमाइन कर सकते हैं, जज कर सकते हैं उस मखरज को। ये मखरज मुहक्कक होता है जिसे आप चेक कर सकते हैं, या जो आपको फील होता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट से वो साउंड आ रही होती है। जबकि मुकद्दर वो मखारिज होते हैं जिनको आप महसूस नहीं कर सकते कि वो साउंड कहां से आ रही है। जैसे जब मैं बोलती हूं बू, तो ये जो ओ की साउंड आ रही है आखिर में, जो वाओ की साउंड है, वो कहां से आ रही है? आपको महसूस नहीं होता कि आपके मुंह में कहीं पर भी कोई जगह हिट हुई हो, कोई दो जिस्म आपस में एक दूसरे से अलग हुए हो। यही आवाज के तरीके ना, कि या तो कोई दो बॉडीज हिट करती हैं या अलग होती हैं, तो ना तो हिट आपको फील होता है, ना आपको सेपरेशन फील होती है। फिर ये वाव कहां से आ रहा है? ये जो वाव की साउंड है, या बी, ये जो या की साउंड है, ये कहां से आ रही है? तो आपको फील नहीं होता किस स्पेसिफिक एरिया से, किस स्पेसिफिक पॉइंट से आ रही है। ओके, मुकद्दर मखरज कौन से होते हैं? मुकद्दर मखारज वो मखारज होते हैं जिनके आर्टिकुलेशन पॉइंट को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये एग्जैक्टली किस जगह से आ रहे हैं, किस पॉइंट से आ रहे हैं। अब जब मैं बोलती हूँ वो, तो मैं नहीं कहूंगी कि वाव कहां से आ रहा है जी, कोई जगह हिट हो गई, टंग कहीं हिट हो गई है, थ्रोट का कोई पार्ट हिट हो गया। नहीं, वो आपको नहीं पता चलता वो साउंड कहां से आ रही है। इंशाल्लाह जब हम वन बाय वन मखरज पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये लेटर आपने इस तरह से रखे हैं, उसमें कोई हिट नहीं आ रहा। तो इन मखारिज को हम कहते हैं मुकद्दर, ठीक? अब ये तो दो मेन कैटेगरीज होगी। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से मखारिज मुकद्दर हैं, कौन कौन से मुहक्कक हैं। अभी हम सिर्फ उनकी कैटेगराइजेशन करें। टू मेन कैटेगरीज हैं, मुहक्कक जो जिनको आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं, मुकद्दर जिन्हें आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, आपको नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली किस पॉइंट से आ रहा है, किस पॉइंट से साउंड आ रही है। फिर आप देखें कि इसके बाद अब हम, जैसे मैंने उस दिन इमाम इब्नुल जज़री का जिक्र किया था, तो इमाम इब्नुल जज़री के मुताबिक हमारे पास 17 मखारिज हैं। इमाम इब्नुल जज़री अपनी पोइम में कहते हैं मखारिज अल हुरूफ 17 अला अल्लज़ी यख्तारुहु मन इख्तबर, यानी मखारिज अल हुरूफ कितने हैं? 17 जो जो उनकी खबर रखना चाहता है उसके लिए, यानी जो उनको समझना चाहता है उसके लिए आर्टिकुलेशन पॉइंट कितने हैं? 17। अब ये 17 मखारिज 5 जगहों से आते हैं, 5 प्लेसेस से, यानी आप ये कह सकते हैं 17 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स 5 आर्टिकुलेशन पार्ट्स से आते हैं। आपकी लिसनिंग का इम्तिहान है, ठीक है? 17 जो आपके पॉइंट्स हैं, यानी कहां कहां, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जबान की नोक से ही आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं जबान की नोक से। आप देखें गम लाइन पर भी आता है, गम लाइन से थोड़ा सा पीछे भी आता है, और वो जो दांत हैं उनके किनारों से भी लेटर्स आते हैं। तो ये सब हैं तो टिप से आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग पॉइंट है इनका। तो एरिया एक हम कंसिडर करते हैं, यानी 5 मेन एरियाज हैं, जिनसे आपके 17 सब मखारे जाते हैं, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। 5 आर्टिकुलेशन पार्ट्स से 17 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स आते हैं, 5 मेन एरिया से 17 सब मखारे जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि वो 5 मेन एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है। मुहक्कक और मुकद्दर को भी साइड पे रखें, अभी हम उन पे जाएंगे कि ये इन 17 मखारिज में से या इन 5 मेन एरियाज में से कौन कौन से मुकद्दर में फिट आते हैं और कौन कौन से मुहक्कक में फिट आते हैं, किनको आप आराम से जज कर लेते हैं, किनको आप नहीं जज कर सकते। अब ये 5 मेन एरियाज लिखें। नंबर 1, जौफ, अल जौफ, अलिफ लाम, जिसको एक्चुअली हमजतुल वसल है, लाम जीम वाउ फा, अल जौफ। नंबर 2, अल हलक, हा लाम कौफ। नंबर 3, जीम वाउफा, ठीक है, जौफ जीम वाउफा, और अल हलक, अलिफ लाम, हा लाम कौफ। मैं इसको अलिफ बोल रही हूँ, ये आपको पता है कि ये हेल्पर हमजा होता है, ठीक है, ये इसको हमजा कंसिडर करते हैं अरबिक में। अल लिसान, अलिफ लाम लाम, सीन अलिफ नून। अशफतान, अलिफ लाम, शीन फाता, अलिफ नून। एंड 5th है अल खैशूम, अलिफ लाम, खो या शीन वाउ मीम, अल खैशूम। तो ये 5 मेन एरियाज हैं, कौन कौन से, अल जौफ, अल हलक, अल लिसान, अशफतान और अल खैशूम। ये 5 आपके मेन एरियाज हैं जहां से कितनी साउंड जाती हैं, 17 मखारिज आते हैं, और सारी साउंड जाती हैं, सारे लेटर्स की लेटर्स हैं प्लस कुछ और साउंड्स हैं, जितने लेटर्स हैं 28-29 उसके साथ जो है आपकी कुछ एडिशनल साउंड्स भी आती हैं, यानी जो लेटर्स की आवाजें नहीं होती मगर वो आवाजें हैं वो भी आती हैं। इनमें आप ये कह सकते हैं कि हलफ, लिसान और शफतान, हलक, लिसान और शफतान, ये 3 मखारिज मुहक्कक हैं, ठीक है, क्या है, मुहक्कक हैं। हलक के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं आर्टिकुलेशन, लिसान में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं आर्टिकुलेशन, जब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि जी बिल्कुल हम इन हिट्स को फील कर सकते हैं, ये जो जब आप लेटर बोलते हैं तो जो हिट आ रहा है उसको हम फील कर सकते हैं। हलक, लिसान और शफतान, ये 3 आर्टिकुलेशन पार्ट्स कौन से हैं, मुहक्कक, मुहक्कक हैं, हलक, लिसान और शफतान। अलजौफ, तमाम स्कॉलर्स एग्रीड हैं कि अलजौफ मुकद्दर है, अलजौफ कौन सा मखरज है, मुकद्दर, यानी आप अलजौफ को फील नहीं कर सकते कि ये किस खास जगह से आ रहा है, किस खास पॉइंट से आ रहा है। और अल खैशूम के बारे में स्कॉलर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है, याद रखें कि हम तजवीद में जितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पढ़ेंगे वो ज्यादातर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थेराटिकल हैं, थ्योरी से रिलेटेड हैं, यानी जैसे आप कहते हैं नहीं जी खैशूम मुझे तो लग रहा है कि ये यहां हिट हो रहा है, और सम अदर स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं मुझे पूरा आइडिया फील हो रहा है, तो इट्स जस्ट अ थेराटिकल, देयर परसेप्शन डिफरेंसेस, साउंड में कोई फर्क नहीं है, साउंड में फर्क नहीं है, सिर्फ उनकी परसेप्शन में डिफरेंस है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं मुझे तो हिट लग रहा है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं हमें पूरा एरिया यू रिलैक्स फील हो रहा है और पूरा एरिया यूज होता है वो फील हो रहा है, इसलिए खैशूम के बारे में स्कॉलर्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। आपको मुकद्दर में भी कंसिडर किया जाता है और मुहक्कक में भी। जी, अल खैशूम के बारे में, अभी चूंकि हम सिर्फ नाम पढ़े तो यू आर नॉट फेमिलियर विद के व्हाट इज अल खैशूम, सो इसलिए सिर्फ इतना याद रखें कि मुहक्कक कौन कौन से मखारिज हैं, मुहक्कक है हलक, लिसान एंड शफतान। अल जौफ में स्कॉलर्स का इत्तेफाक है कि ये मुकद्दर है, और खैशूम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्कॉलर्स के बीच में पाया जाता है, कुछ स्कॉलर्स इसको मुहक्कक में कंसिडर करते हैं और कुछ इसको मुकद्दर में कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो आप इसको एज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन याद रखें। नोट्स में किसी खास जगह के ऊपर ये लिखा होगा, लेकिन आप इस पॉइंट को अपने साथ याद रखें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है खैशोम, खैशोम के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का। ओके, अब हम आ जाते हैं यानी मेन मखारिज के ऊपर, कि जैसे हमने देखा कि सबसे पहले हम देखेंगे अलजौफ क्योंकि इसका सबसे पहला नंबर है, ठीक है। और ये जो तरतीब है ना, ये बेसिकली तरतीब ही लेटर्स आपके थ्रोट से स्टार्ट हो रहे हैं और थ्रोट से फिर मुंह यानी आपका लसान, फिर शफातान, फिर लिप्स और फिर नेजल कैविटी, इस तरह से ये जो तरतीब है वो भी बिल्कुल सीक्वेंस से आ रही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जौफ से। अलजौफ क्या है? अलजौफ बेसिकली मुंह और हलक का खाली हिस्सा, ठीक है। और यहां से कौन सी साउंड जाती है? हरूफुल मद, स्पेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। व्हाट इज अलजौफ? स्पेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। और यहां से कौन सी आवाज आती है? हरूफुल मद की। और मुझे उम्मीद है कि आप सब हरूफुल मद से फैमिलियर होंगे, मद लेटर्स जिन्हें आप खींच के पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ से पहले फतहा, अलिफ मदिया, वाव साकिन से पहले बम्मा, वाव मदिया, या साकिन से पहले कसरा या मदिया। तो ये तीन साउंड्स कहां से आती हैं? जौफ से। अब आप जब ये तीन साउंड्स बोलेंगे ना, तो आपको आप सब बोल के चेक करें कि आपको महसूस होता है कि ये कहां से आवाज आ रही है। आप इसको चेक नहीं कर सकते, आप इसको फील नहीं कर सकते कि किस एग्जैक्ट जगह से ये साउंड आ रही है। इसमें एक बहुत अच्छी ओपिनियन मैंने पढ़ी थी किसी स्कॉलर की, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा, लेकिन उन्होंने ये ओपिनियन दी थी और मुझे ये जो डेफिनेशन है इसकी, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लगी। और वो थी कि जो जौफ की साउंड्स हैं यानी तीनों हरूफुल मद की साउंड, ये बेसिकली स्टार्ट होती है डीप पार्ट ऑफ थ्रोट से। कहां से स्टार्ट होती है? डीप पार्ट ऑफ थ्रोट से स्टार्ट होती है, यानी बिल्कुल अक्सल हलक से, डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट से स्टार्ट होती है। फिर ये साउंड ट्रेवल करती है हलक में, फिर ये साउंड ट्रेवल करती है स्पेस ऑफ माउथ में, यानी स्पेस ऑफ हलक में पहले ट्रेवल करती है हलक के खाली हिस्से में, फिर मुंह के खाली हिस्से में ट्रेवल करती है, और इसका एंड कहां होता है? हवा के ऊपर। इसीलिए इमाम इब्नुल जज़री भी कहते हैं हरूफ मद्दिन लिल हवा इतंतही, एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। इंशाल्लाह जब हम इसकी साउंड को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। इमाम इब्नुल जज़री कहते हैं हरूफ मद्दिन लिल हवा इतंतही, के हरूफ मद इनकी इंतहा यानी इनका इन साउंड्स का एंड अप कहां होता है? हवा पर। हाँ, मैंने जैसे आपको बताई वो स्कॉलर की ओपिनियन, और वो क्या कहते हैं कि ये साउंड्स इनिशिएट होती हैं डीप पार्ट ऑफ थ्रोट से, ट्रैवल करती हैं स्पेस ऑफ थ्रोट में, फिर ट्रैवल करती हैं ये साउंड स्पेस ऑफ माउथ में, और ये कहां पर जाता है? मुंह से बाहर हवा के ऊपर इनका एंड होता है। इंशाल्लाह इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट एरर्स मिस्टेक्स देखेंगे, कॉमन एरर्स देखेंगे, उनको अवॉइड करने का तरीके देखेंगे, और फिर हम अगले मखरज पर चलेंगे इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन। बारकल्लाहु फीकुम, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।